مصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورة النور کی تفسیر پر ہم واپس آ چکے تھے، اس کے معروف مسائل کل ہم نے مزید پڑھے تھے. اس کے اندر کچھ باتیں ریپیٹ ہوئی تھیں کہ یہ جو احکام حجاب ہیں دین اسلام کے اندر، یہ فواہش کا راستہ روکنے کے لیے ہیں. تو جو اصل گناہ ہے زنا کا گناہ، تو اس کی سزا کا سورہ نور کے اندر سب سے پہلے تذکرہ آ گیا، لیکن اس کے بعد بہت ساری ایسی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو کہ گناہ تک پہنچا دینے والی باتیں ہیں، جس کے اندر ایون کسی کی اجازت لیے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو جانا بھی شامل ہے، کیونکہ ایسے داخل ہو جانا بھی جو ہے وہ فحش کام کے کرنے کا سبب بن سکتا ہے. تو اس کا بھی، یعنی اس کا بھی راستہ روک دیا، اور اس کے علاوہ پھر یعنی نگاہوں کا راستہ روکا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یعنی جو نامحرم مرد ہیں، نامحرم عورتیں ہیں، تو ان کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا تو حرام قرار دے دیا، اور بلا شہوت بھی دیکھنا خلاف اولا قرار دے دیا، ایون عورتوں کے لیے بھی. تو عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھنا، اس کے بارے میں کل تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا پیج نمبر 400 سے، کہ اس کے بارے میں جو دو قول ہیں کہ کیا یہ مطلقاً حرام ہے یا یہ مقیداً حرام ہے. اس کے بعد پھر جو آیت ہے ولا یبدین زینتہن، تو اس کے تحت پھر زینت کے معنی مفہوم پڑھے تھے کہ زینت سے کیا مراد ہے، اور یہاں پر زینت سے مراد محل زینت ہے، یعنی جن مقامات کے اوپر عورت اپنے بدن میں زینت کی چیزیں پہنتی ہے، تو دراصل وہ مقامات مراد ہیں. صرف زیور اور کپڑے اور میک اپ کی چیزیں مراد ہیں، یا اگر وہ عورت کے بدن سے دور ہوں تو پھر ان کی کوئی دیکھنے کی حرمت نہیں ہے ان کی طرف. پھر احکام پردہ سے استثناء جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، الا ما ظہر منہا، تو الا حرف استثناء ہوتا ہے، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایگزمٹ کیا ان لوگوں کو یا ان جگہوں کو جن کو کہ عورت ظاہر کر سکتی ہے، یا ان لوگوں کو کہ جن کے سامنے اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر کر سکتی ہے. تو ما ظہر منہا کے تحت پہلے تو یہ تھا کہ یعنی منظور، ٹھیک ہے، یعنی جس کی طرف دیکھا جائے، تو منظور کے اعتبار سے کیا ایکسپشن تھی کہ وہ چیزیں جو کہ خود بخود ہی ظاہر ہو جاتی ہیں. اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ جو عورت کا برقع ہوتا ہے یا لمبی چادر، تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے یعنی گویا کہ بدن کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر کرنا جب اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو یہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا کیا ہوا کہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے عورت کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی گاڑی کے اندر نکلے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں گاڑی، پرانے دور کے اندر پالکی ہوتی تھی یا شغدف جس کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. تو یہ واجب نہیں ہے کہ آپ نے پالکی کے اندر ہی نکلنا ہے، یا آپ نے کسی گاڑی کے اندر ہی ایسے نکلنا ہے کہ جس کے ونڈوز ٹنٹڈ ہوں تاکہ کوئی باہر سے آپ کو نہ دیکھ سکے، بلکہ آپ ایک لمبی چادر یا برقع پہن کر کے باہر نکل سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ اس کو پہن کے باہر نکلیں گے تو باہر چاہے جو بھی ہوگا، مرد ہوگا، عورت ہوگی، محرم ہوگا، نان محرم ہوگا، جیسا بھی ہوگا، مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، اس کی نظر آپ کے برقعے کے اوپر تو پڑے گی. تو برقعے کے اوپر پڑنا یہ آپ کے لیے گناہ کا باعث نہیں ہوگا، نہ اس دیکھنے والے کے لیے گناہ کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ برقعہ برقعے کو تاکتے رہنا وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ عورت کے برقعے کو ہی کیوں تاک رہا ہے، تو وہ اس کے گناہ کا باعث بن سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے برقعہ پہنا ہوا ہے، اور برقعہ ایسا ہے کہ جو کہ خود زینت کا موقع نام نہیں بن گیا ہو کہ اس کے اوپر اتنے اچھے اچھے ماشاءاللہ ایمبرائڈری اور ڈیزائننگ ہو کہ اس دنیا کو وہی اٹریکٹ کر رہا ہو. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود عنہ کا قول تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ کے نزدیک کیا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن ان کا جو استثنا ہے وہ بھی ضرورت ہی کے تحت ہے کہ جہاں پہ ایسے کام کاج وغیرہ ہوں کہ چہرہ کھولنا پڑ جائے تو وہاں پر عورت کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. لیکن اس کی تفصیل ابھی ہم آگے پڑھ رہے ہیں مزید، پیج نمبر 402 کے اوپر، 401 لکھا ہے لیکن 402 سے ہی ہم شروع کریں گے جہاں ہم نے فرسٹ پیراگراف پہ چھوڑا تھا. तो 402 में फर्स्ट पैराग्राफ में वही बात रिपीट करते हैं कि मगर इस पर सबका इत्तेफाक है कि अगर चेहरे और हथेलियों के ऊपर नजर डालने से फितने का अंदेशा हो तो उनका देखना भी जायज नहीं है और औरत को उनका खोलना भी जायज नहीं है। इसी तरह इस पर भी सबका इत्तेफाक है कि सतरे औरत जो नमाज में इजमाअन और खारिज खारिज नमाज अलल असह फर्ज है, इससे चेहरा और हथेलियां मुस्तस्ना है। अगर इनको खोल कर नमाज पढ़ी तो नमाज बा इत्तेफाक सही दुरुस्त हो जाएगी। तो चेहरा खोल करके औरत नमाज पढ़ती है और हाथ खोल करके भी औरत नमाज पढ़ती है, हत्ता कि पैर भी खोल कर, तो नमाज उसकी हो जाती है। अगर ये सतर में दाखिल होता तो नमाज ना होती। ठीक है, तो सतर का तो मसला हम जैसे पढ़ चुके हैं अलग ही होता है और हिजाब का मसला एक अलग है। तो यहाँ पर सतर की बात कर रहे हैं कि चेहरा और हथेलियां से मुस्तस्ना है। अच्छा, कल हमने तफसील के साथ फितने की तारीफ डिस्कस करी थी और ये भी डिस्कस किया था रिपीटेडली कि फितने की तारीफ कौन करेगा, किससे हम इसकी तारीफ लेते हैं, या किसी आम मुसलमान से या किसी भी फर्द से हम फितने की तारीफ लेते हैं। भाई तो आप डिफाइन करें कि फितना क्या होता है, या ये कि हम अहले इल्म हजरात से फितने की डेफिनेशन लेते हैं। तो एक नॉर्मल अकल वाला इंसान भी इस बात को समझता है कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं उन्हीं से जो ओपिनियन लिया जाता है ना वही सही ओपिनियन होता है, और नॉन एक्सपर्ट से जो कि खाली अपनी राय जनी करते हैं किसी मामले के अंदर बगैर इल्म के, बगैर समझ के, बगैर एक्सपीरियंस के, तो उनसे अगर आप ओपिनियन लेंगे तो फिर वही होगा जो कि हमारे मुल्कों में होता है। क्या होता है हमारे मुल्कों के अंदर कि जी हर इंसान को वोट का हक है। ठीक है ना, हर इंसान चाहे वो यानी जाहिल हो या समझदार हो, चाहे वो बहुत बड़ा जो है वो दीन का आलिम हो, चाहे वो बिल्कुल ही जाहिल हो दीन से, चाहे वो दुनियावी तौर पर बहुत ज्यादा PhD उसने किया हुआ हो, चाहे वो जो है दुनियावी तौर पर बिल्कुल ही छठी जमात भी ना पढ़ा हुआ, हर एक के पास वोट का हक है। ठीक है, तो हर एक बंदा वोट देता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, हमारे सामने है। ठीक है ना, क्या निकलता है हमारे सामने है कि उसके अंदर फिर ऐसी हुकूमतें आती हैं कि पे जो जो आकर के हमें अच्छी तरीके से नचाती हैं। ठीक है, और हमें अच्छी तरीके से फिर हमारे चीजें लूटती भी हैं और हमें फिर हम पर जुल्म भी करती हैं मुख्तलिफ अंदाज से। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ऐसा मामला दुनिया में नहीं रखा है कि हर एक को एक तरीके से ट्रीट किया जाए, हर एक को एक ही इख्तियार दे दिया जाए, एक ही हक दे दिया जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने हुकूक जो है वो मुख्तलिफ रखे हैं। ठीक है, औरतों के हुकूक अलग रखे हैं, मर्दों के हुकूक अलग रखे हैं, बूढ़ों के हुकूक अलग रखे हैं, बच्चों के हुकूक अलग रखे हैं। ठीक है ना, तो हर एक का हुकूक जो हक जो होता है वो उसके हिसाब से जैसा अल्लाह ने उसको बनाया है वैसे उसका हक रखा है, सबका हक एक बराबर नहीं रखा है। आगे चलते हैं कि काजी बैदावी, बहुत बड़े मुफसिर कुरान, इनकी तफसीर जो है वो बाकायदा मदारिस में पढ़ाई भी जाती है। तो काजी बैदावी और खाजन, ये भी दूसरे मुफसिर हैं, ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि मुक्तदा यानी पर्पज इस आयत का ये मालूम होता है कि औरत के लिए असल हुक्म यह है कि वो अपनी जीनत की किसी चीज को भी जाहिर ना होने दे, क्योंकि जैसे कल हमने रगबत और तलब और मोहब्बत, ठीक है, ये बातें करनी थी ना कि जी पहले रगबत फिर उसके बाद तलब पैदा होती है फिर मोहब्बत पैदा होती है, तो ये जो रगबत है ये रगबत जो है वो जीनत की चीजों से की तरफ होती है। ठीक है, कोई इंसान जो है वो नजासत की तरफ रागिब नहीं होता। ठीक है ना, कोई बदसूरती की तरफ रागिब नहीं होता, राइट। नॉर्मल इंसान अगर बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो तो वो बदसूरती की तरफ रागिब होगा। ठीक है, नजासत की तरफ रागिब होगा, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो जीनत वाली चीजों की तरफ रागिब होता है। तो जब जीनत वाली चीजों की तरफ रागिब होता है तो पर्दा जो है वो जीनत ही वाली चीजों का हुआ, तो अपनी जीनत की किसी भी चीज को जाहिर ना होने दे, बिल्कुल सिंपल क्लियर सी बात है जो कि यानी हमारी अकल में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना, तो इन्होंने जो फरमाया तो इसके ऊपर मजीद बहस करने की जरूरत ही नहीं है कि जी कहाँ से इन्होंने ये नतीजा निकाल लिया और ये कौन होते हैं नतीजा निकालने वाले। ठीक है भाई, इन्होंने कॉमन सेंस बात कर दी है, बड़े आलिम भी हैं तो इनका इल्म भी जो है वो इसको सपोर्ट करता है और कॉमन सेंस भी इसको सपोर्ट करता है कि जीनत की चीज तो रागिब करती है इंसान को अपनी तरफ। तो यही तो मसला है सारा कि जी ना नो यानी नाजायज को अपनी तरफ रागिब ना करो। जैसे कि हमने US प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट पढ़ी थी कि ये जो सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप है इसके विक्टिम्स औरतें होती हैं, मर्द नहीं होते हैं। ठीक है, क्या हमने इसकी तादाद पढ़ी थी 1 in 5 अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, जहां बड़ी कानून की जी सपोजिटली बालादस्ती नजर आती है, बड़ा उनके जो है वो कोर्ट सिस्टम जो है वो अपने तौर पर काम करते हैं, पुलिस फोर्स भी उनकी बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी भी है कि जिसके जरिए से वो लॉ को इन्फोर्स करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद 1 in 5 वुमेन, एक यानी 5 में से एक औरत जो है जो होती है वो इस का शिकार होती है, ठीक है, और वो जिना नहीं बल्कि जो जबरी जिना होता है उसका शिकार होती है, और जो वैसे ही अपनी मर्जी से होता है वो तो शायद 5 के अंदर 4 औरतें होती होंगी, जो कि वो ये 5 के अंदर 4 भी नहीं, शायद वहां का जो हिसाब है तो 4.5 औरतें, अगर वो प्योर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो शायद 4.5 औरत जो होती है वो निकाह के बाहर ही जो है वो उसका मामला चल रहा होता है। तो ये सारा क्यों है, क्योंकि दीन इस्लाम चाहता है कि औरत जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे, और मर्दों के साथ मामला ये नहीं होता, इसी वजह से प्योर स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं इनकी कि जी 71 में से एक मर्द के साथ ही मामला होता है, ठीक है, तो उस मुआशरे के अंदर 71 में से एक मर्द के साथ ही मामला होता है। तो औरत है ना जिसको कि अपने आप को बचाना है, मर्द के लिए तो नहीं फिर कहा जाएगा कि वो अपने आप को बचाता फिर हर वक्त पर्दा करे वो हर वक्त, राइट। बजुज इसके जो नकलो हरकत और कामकाज करने में आदतन खुल ही जाती हैं, इनमें बुरका और चादर भी दाखिल है, यानी कामकाज के लिए जब आप बाहर निकलते हैं तो बुरका और चादर तो दूसरों को नजर आएगा, और चेहरा और हथेलियां भी, जब औरत किसी मजबूरी और जरूरत से बाहर निकलती है तो बुरका चादर वगैरह का जाहिर होना तो मुतय्यन ही है, ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस है कि बुरका चादर तो नजर आएगी। लेन देन की जरूरत में बाज औकात चेहरा और हाथ की हथेलियां भी खुल जाती हैं। अब लेन देन की जरूरत का क्या मतलब, क्या आप कपड़े खरीदने जाती हैं तो उस वक्त जरूरत पड़ती है कि अपना चेहरा जो है वो दुकानदार को दिखाएं, राइट, या जेवर खरीदने के लिए जाती हैं तो उस वक्त क्या आपको जरूरत पड़ती है कि अपना चेहरा जो है वो दुकानदार को दिखाएं, ठीक है, तो उस वक्त तो जरूरत नहीं पड़ती है ना, हमने तो नहीं देखा, लोग तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे वाकयात सुने, वो जो रमजान की हमारे यहाँ जो है वो चूड़ियों के स्टॉल लगते हैं तो वहां पर जो है वो लड़कियां पहुंच जाती हैं ईद रात को, यानी रमजान अभी खत्म भी नहीं हुआ और ईद रात को पहुंच जाती हैं और वहां पे चूड़ियां पहनाने वाले जो हैं वो औरतों के हाथ पकड़ करके उनको चूड़ियां पहना रहे होते हैं। हाँ भाई ये तो जरूरत है, वरना चूड़ी जो है वो तो हाथ के अंदर जाएगी नहीं, राइट, तो अपनी हाथ पकड़ा रही होती हैं उन लड़कों को और वो लड़के जो है वो हाथ पकड़ करके चूड़ी अंदर डाल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो भाई हर्ज यानी ये भी तो डेफिनेशन हो सकती है ना कि हाँ जी तकलीफ होती है चूड़ी पहनने में, तो इस वजह से जरूरत है कि कोई मर्द हमारा हाथ पकड़ करके अंदर चूड़ी डाले, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या हर्ज कहा जाएगा कि भाई दीन के अंदर हर्ज नहीं है इस वजह से इसकी गुंजाइश निकलती है कि अपना हाथ पकड़ा दो, राइट, तो ये तो हर्ज नहीं कह रहा है ना, तो फिर फासिक फाजर गुनाहगार जो होता है वो तो किसी भी चीज को हर्ज बना सकता है, ठीक है ना, तो अकल की बात सीधी सी यही है कि ये हर्ज की डेफिनेशन में नहीं है। तो लेन देन की जरूरत का मतलब फिर क्या हुआ कि जो हुकूमत की तरफ से मजबूरी नाफिज की हुई है, ठीक है, कि जी पासपोर्ट बनाना है, उसके बगैर आप कहीं नहीं जा सकते, कि आप हज के सफर पे यानी रिश्तेदारों से मिलना तो दूर की बात, आप हज और उमरे के सफर पे भी नहीं जा सकते, ठीक है ना, आप यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया से आपका ताल्लुक है और आपका शादी होकर के आप पाकिस्तान में आ गई हैं तो अब अपने वालिदैन से मिलने के लिए इंडिया नहीं जा सकते या किसी और मुल्क में आपके वालिदैन रहते हैं तो उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो पासपोर्ट जो है वो कहलाएगी लेन देन की जरूरत, ठीक है, उसी तरीके से आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आईडी कार्ड के बगैर जो है वो आपके अपने मुल्क के अंदर रहते हुए काम नहीं हो सकते, ठीक है, मेडिकल कार्ड्स जो लोग बनवा देते हैं कि जी हॉस्पिटल के अंदर अगर आपको मेडिकल सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस कार्ड बनाना है, मेडिकल कार्ड बनाना है, तो उन चीजों के अंदर तस्वीर है, या स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना है तो वहां पर कार्ड यानी तस्वीर के बगैर एडमिशन नहीं हो सकता, इस तरह की चीजें जो है ना ये लेन देन की जरूरत में आएंगी। और इसके अलावा आगे जैसे मेंशन है कि अगर कोई सिक्योरिटी रीजंस हो तो उसके लिए या कोर्ट रूम के अंदर काजी को या गवाहों को यानी चेक करना हो कि वाकई यही औरत है कि जिसके बारे में ये मुकदमा चल रहा है, तो उसमें फिर उसको चेहरा खोल करके दिखाना पड़ेगा, तो ये सब लेन देन की जरूरियात कहलाती हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के नजदीक हाथ या चेहरे का इस्तिस्ना है जरूरत के वक्त, क्या जो हज के दौरान फेस कवर नहीं करते क्या वो इस इस्तिस्ना में आएगा? नहीं, हज के दौरान फेस कवर नहीं करते जो वाला जो मामला है ना वो ऐसा नहीं है, हज के दौरान यानी एहराम की हालत में जो हुक्म है वो ये नहीं है कि चेहरा कवर ना करो, वो हुक्म ये है कि चेहरे को पर्दा को कपड़ा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, और ये जो चेहरे को पर्दा यानी एहराम की हालत में चेहरे को कपड़ा नहीं लगना चाहिए ना, तो ये कपड़ा नहीं लगने वाला मामला जो है ये एक तो एहराम के साथ मखसूस है, दूसरा इसका मतलब ये नहीं है कि चेहरा खोल करके फिर फिरना शुरू हो जाए, आराम की हालत में। तो इसका यानी एक बात तो इससे यानी हम उलमा जो इससे कंक्लूजन अखज करते हैं, तो एक तो साफ कंक्लूजन इससे ये है कि चलो जी एहराम की हालत की तो बाद में बात करते हैं ना, पहले ये करें कि अगर एहराम की हालत में चेहरे पे कपड़ा ना लगने का हुक्म है तो एहराम के बगैर जो हालत होती है जो कि आपकी सारी जिंदगी होती है, तो उसमें तो चेहरे के ऊपर कपड़ा औरतों के लिए फिर लगने का है ना। यदि कपड़ा लगे लगता है एहराम के बाहर, जब भी तो एहराम के अंदर खास तौर पर कहना पड़ा कि कपड़ा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि चेहरा खोला जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोई इस किस्म का हिजाब किया जाए कि कपड़े को चेहरा ना लगे, या सॉरी चेहरे को कपड़ा ना लगे, ठीक है। तो इस वजह से उलमा के नजदीक जो है वो थोड़ा सा चेहरे से दूर हटा करके निकाब पहनने का है, जैसे कि वो आपने देखा होगा वो जो कैप्स होती हैं पी कैप्स, तो उसके ऊपर पर निकाब डाल लेते हैं ताकि ऊपर से जरा दूर रहे चेहरे से कपड़ा। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एहराम की हालत में चेहरा खोल करके फिर फिरना जरूरी है, ठीक है। यानी ये कोई कंडीशन नहीं है। कुछ लोगों ने जाहिर है जो कि यानी वैसे ही नहीं करना चाह रहे हैं आम जिंदगी के अंदर भी, तो उनको तो फिर जाहिर है उनको उनके लिए तो फिर ये बात एप्लीकेबल नहीं रहती है ना, तो वो जहाँ बाहर नहीं करते तो फिर अंदर भी नहीं करते एहराम की हालत में। अच्छा अलबत्ता ये कि उस हालत में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रतारान की जो एक्सेप्शन है ना, तो वो एक्सेप्शन इस जरूरत के तहत ही है, और ये जरूरत के अंदर बाकी चीजें तो आ जाती हैं, एहराम की हालत वाली जरूरत जो है वो नहीं आती है। हमने कभी भी उलमा से इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है। अच्छा आगे चलें कि तो लेन देन की जरूरत में बाद औकात चेहरा और हाथ की हथेलियां भी खुल जाती हैं, तो वो भी मुआफ है, गुनाह नहीं है। लेकिन इस आयत से ये कहीं साबित नहीं कि मर्दों को चेहरा और हथेलियां देखना भी बिला जरूरत जायज है, बल्कि मर्दों का तो वही हुक्म है कि निगाह को पस्त रखें। अगर औरत कहीं चेहरा और हाथ खोलने पर मजबूर हो जाए तो मर्दों को लाजम है कि बिला उज्र शरई और बिला जरूरत के उसकी तरफ ना देखें। इस तौजीह में दोनों रवायतें और तफसीरें जमा हो जाती हैं। तो यानी मर्दों के लिए देखना नाजायज होगा, और ये नहीं है कि जी साइड में खड़े हुए मर्द जो है वो अब ये समझना शुरू हो जाए कि चूंकि औरत ने खोल दिया है अपना चेहरा तो अब जो है वो हमारे लिए भी कोई गुनाह नहीं है उसको देखना, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आपके लिए देखना जो है वो गुनाह ही होगा। वो तो अपनी मजबूरी से खोल रही है, और जिसको देखना जरूरी है सिर्फ वही देख सकता है, और किसी दूसरे को जो यानी पब्लिक के अंदर मौजूद लोग हैं उनको देखना का मतलब यह है, उनके देखने का मतलब यह है कि उनके नाम अमाल के अंदर गुनाह लिखा जा रहा है। अच्छा इस तौजीह में दोनों रिवायतें और तफसीरें जमा हो जाती हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर मजहब भी यही है कि गैर महरम औरत के चेहरे और हथेलियों पर नजर करना भी बगैर जरूरत मबीहा के जायज नहीं है, और जवाजर में इब्ने हजर मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के भी यही मजहब नकल किया है कि अगरचे औरत का चेहरा और हथेलियां सतर औरत के फर्ज में दाखिल नहीं, उनको खोल कर कर भी नमाज हो जाती है, मगर गैर महरम मर्दों को उनका देखना बिला जरूरत शरईया जायज नहीं है। और ये ऊपर मालूम हो चुका है कि जिन फुकहा ने चेहरे और हथेलियों को देखना जायज करार दिया है वो भी इस पर मुत्तफिक हैं कि अगर फितने का अंदेशा हो तो चेहरा वगैरह देखना भी नाजायज है, और ये जाहिर है कि हुस्न और जीनत का असल मरकज इंसान का चेहरा है। तो कल हम फितने के बारे में अच्छी खासी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इस वजह से उसको अभी रिपीट नहीं करेंगे। आगे फरमाया कि जमाना फितना और फसाद और गलबा हवा और गफलत का है, इसलिए बजुज मखसूस जरूरतों के मसलन इलाज मुआवजा या कोई खतरे शदीदा वगैरह औरत को गैर महारिम के सामने कसदन चेहरा खोलना भी ममनू है, और मर्दों को उसकी तरफ कसदन नजर करना भी बगैर जरूरत शरईया के जायज नहीं है। अब इसमें इलाज मुआवजा का जो उन्होंने लिखा है, तो इलाज मुआवजे में बात याद रहे कि इसमें जो शरीयत जायज करार देती है ना इलाज मुआवजे के लिए यानी डॉक्टर के लिए देखना, तो वो सिर्फ वो मुकाम होता है कि जहां पर के इलाज करना है, लेकिन चूंकि बदकिस्मती से हमारी अपनी करतूतों की वजह से इस पूरी दुनिया का जो निजाम है वो मुसलमानों के हाथ से निकल चुका है, ठीक है। यानी जो नेक मोमिन ईमान वाले होते हैं तो उनके हाथ से दुनिया के निजाम पूरा निकल गया, तो अब इस निजाम निकलने का कॉन्सिक्वेंस नतीजा ये है कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है ना, ये भी अब काफिरों के हाथ में आ चुका है, और काफिरों ने डिफाइन करना शुरू कर दिया है कि जी इलाज मुआलजे के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब उनके यहाँ तो क्या नहीं वाली तो कोई कोई जरूरत ही नहीं होती, उनके यहाँ तो कोई शरीयत नहीं होती ना, उनके यहाँ तो जन्नत जहन्नुम का ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, उनके यहाँ तो फरिश्ते जो है वो बैठ करके डॉक्टर साहब के भी नामे अमाल में गुनाह लिख रहे हैं, उनके यहाँ तो ये सब नहीं होता। तो उन्होंने फिर अपनी मेडिकल साइंस की जो तालीम राइज करी है ना, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी पढ़ाई जाती है, और हमारे डॉक्टरों डॉक्टरों को भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स का पाबंद किया जाता है कि जी इलाज तुमने ऐसे करना है, तो उनकी फिर तारीफ ये है कि जी आपने सिर्फ उस मौके को नहीं देखना कि जहां पर के वो मरीज जो है वो अपना मसला बता रहा है, बल्कि आपने पूरा का पूरा देखना है, आपने उसके अलावा भी इधर उधर सब कुछ ही देखना है। और उसके फिर उन्होंने बहुत सारी हुज्जतें हैं, बहुत सारे जो है वो रीजन बनाए हुए हैं, कभी जो है वो एप्लीकेबल होते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो उनके तौर उनके मुताबिक हिफ्ज़े मा तकद्दुम। ठीक है, यानी कोई चीज अभी नहीं हुई है लेकिन उसके होने से पहले ही जो है वो उसका जरा चेकअप वगैरह कर लिया जाए, तो फिर वो जो है वो सिर्फ उस मौके को नहीं देखने पे इक्तफा करते हैं, बल्कि पूरे बदन को ही तकरीबन खोलने के ऊपर, ये बड़ा बड़ा एम्फेसिस है इसके ऊपर कि पूरा बदन खोला जाए, पूरे अच्छी तरीके से चेकअप किया जाए। तो इस वजह से जो है ना, इस दौर के अंदर ये फीमेल डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट बना है। ठीक है, कि फीमेल डॉक्टर्स जो होती हैं, फिर इसको हमारे उलमा जो है वो मना नहीं करते हैं कि जी फीमेल डॉक्टर्स अगर हैं तो उनको करने दो अपनी प्रैक्टिस, इसलिए कि ये जो मेल डॉक्टर्स वाला मामला है ये बिल्कुल ही हया और पर्दे के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, बहरहाल जितना अपने आप को बचा सकते हैं उतना ही बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इनसे जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनको कोई ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि ये गोया के यानी इनका नाउजुबिल्ला ऐसा समझ लेना कि जी इनका मामला तो जैसे शोहर के जैसा मामला है। ठीक है, ऐसा मामला नहीं होता सिर्फ डॉक्टर होने की वजह से, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से दुआई कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए इनसे। खैर, जरा थोड़ी होल्ड कीजिएगा, दोबारा तो ये तो इलाज मुआवजे के बारे में चंद बात थी। खतरा शदीदा के अंदर वही सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं जहां पर कि आपको आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और ये आइडेंटिफिकेशन की जरूरत जो है वो अथॉरिटीज जो होती हैं यानी पुलिस है, फौज है, या बॉर्डर कंट्रोल वाले हैं, इमिग्रेशन वाले हैं, इस हद तक जरूरत पड़ती है। वहां पर भी जैसे पहले बात हुई थी कि अगर मुमकिन हो कोई खातून मिल जाती हैं तो उन्हीं को प्रेफर करना चाहिए, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी फिर इन मवाक़े मजबूरिया के अंदर आ जाती हैं। औरत को गैर महरम के सामने कसदन चेहरा खोलना भी ममनू है, और मर्दों को उसकी तरफ कसदन नजर करना भी बगैर जरूरत शरिया के जायज नहीं है। ठीक है, आयत मस्कूरा में जीनत जाहिरा के इस्तिस्ना के बाद इरशाद है, वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, यानी आंचल मार लिया करें अपने दुपट्टों का अपने सीनों पर। ये तो उसका तर्जुमा हो गया। बाकी ये कि खुमुर हिन्ना यानी अपने खुमुर, ठीक है, यानी यद्रिबना का मतलब होता है डाल लिया करें। वैसे तो मारना दरबा यद्रिबू का मतलब होता है मारना, लेकिन जाहिर कपड़ा आप मारते नहीं है, कपड़ा आप डालते हैं, तो दरबा यद्रिबू के फिर यूज जो है ना वो इसमें भी आता है, कपड़ा डालना या मिसाल कोई बयान करना उसके लिए भी दराबा या दरबू का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अपने खुमर जो है वो डाल लिया करें, अला जुयूबिहिन्ना अपने जुयूब के ऊपर। तो खुमर का मतलब क्या है, ये खिमार की जमा है, इस कपड़े को कहते हैं जो औरत सर पर इस्तेमाल करे और उससे गला और सीना भी छुप जाए, और जुयूब जीभ की जमा है जिसके मानी है गिरेबान, क्योंकि जमाना कदीम से गिरेबान सीने ही पर होने का मामूल है। ठीक है, यानी कपड़ों के अंदर जो गिरेबान बनाए जाते हैं सब औरतों को खुसूसा मालूम है कि वो सीने पर ही होते हैं, इसलिए जुयूब के छुपाने से मुराद सीने का छुपाना है। शुरू आयत में इजहार जीनत की ममानियत थी, इस जुमले में अख्फाए जीनत की ताकीद यानी जीनत को छुपा के रखने की ताकीद है, पहले ममानियत आ गई अब उस ममानियत की ताकीद आ रही है, एम्फेसिस। और इसकी एक सूरत का बयान है कि जिसकी असल वजह एक रस्म जाहिलियत का मिटाना है। जमाने जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले औरतें दुपट्टा सर पर डालकर उसके दोनों किनारे पुश्त पर छोड़ देती थी, यानी पीछे की तरफ, जैसे कि मर्द, जैसे आपने अरबों में देखा होगा कि वो सर के ऊपर इस तरह की दुपट्टे वो रुमाल या चादर डाल करके पीछे की तरफ छोड़ दें। तो भाई औरतें भी इसी तरीके से करती थी, जिससे गिरेबान और गला और सीना और कान खुले रहते थे, यानी इवन कान के भी पीछे से गोया के कपड़ा जाता था। इसलिए मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो ऐसा ना करें, बल्कि दुपट्टे के दोनों पल्ले एक दूसरे पर उलट लें ताकि ये सब आज़ा छुप जाएं। गिरेबान, गला, सीना और कान, ये सब के सब छुप जाएं। आगे दूसरा इस्तिस्ना उन मर्दों का बयान किया गया है जिनसे शरअन पर्दा नहीं है, जिसके दो सबब हैं। तो ये तो फिर ताकीद हो गई, और इस ताकीद के अंदर यानी ताकीद के अंदर ये जो चार आज़ा का जिक्र है, तो इसमें जाहिर है चेहरा जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन चेहरे का की जो सारी डिस्कशन है वो अलग कवर हुई है, ठीक है। तो कोई इसको पढ़ करके ये ना समझे कि देखो देखो चेहरा तो नहीं है ना इसके अंदर, तो भाई उनको याद ही कराया जाएगा कि चेहरे की तो अलग डिस्कशन है जो कि हम कर चुके हैं सारी, ठीक है। अच्छा, आगे दूसरा इस्तेमाल मर्दों का बयान किया गया है कि जिनसे शरण पर्दा नहीं, यानी अब नाजिर की बात हो रही है कि कौन से नाजिर, नाजिरीन का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो कौन से नाजिर मुस्तस्ना है इस पर्दे की पाबंदियों से। तो उसके क्यों मुस्तस्ना है, पहली बात, तो उसके दो सबब बयान किए। अव्वल ये कि जिन मर्दों को मुस्तस्ना किया गया है उनसे किसी फितने का खतरा नहीं है, वो महारिम है कि जिनकी तबाए को यानी उनकी तबीयतों को हक ताला ने खिलकतन ऐसा बनाया है कि वो इन औरतों की असमत के मुहाफिज होते हैं, इज्जत के मुहाफिज ये मर्द होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये फितरत बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर लफ्ज फितरत इस्तेमाल किया खास तौर पर ताकि आपको एक पुरानी एक्सप्लेनेशन याद आ जाए। वो एक्सप्लेनेशन किसी को अगर याद आती है तो प्लीज चैट विंडो के ऊपर लिख करके जवाब दें कि फितरत का जब जिक्र किया जाएगा तो वो क्या डिस्कशन हमने करी थी फितरत से मुताल्लिक, बहुत ज्यादा शुरू की क्लासों के अंदर। चलिए मैं जब तक आगे पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी तबाई को ऐसा बनाया है खिलकतन कि वो इन औरतों की असमत के मुहाफिज होते हैं, इनसे खुद कोई फितने का इहतमाल नहीं होता। दूसरे इस्तिस्ना का दूसरा सबब कि हर वक्त एक जगह रहने सहने की जरूरत भी सहूलत पैदा करने की मुक्तजा है, ठीक है, साथ रहना होता है, मर्दों की फितरत में गैरत होती है, ठीक है। ये एक अच्छी डिस्क आपने याद करवाई कि हाँ ये हमने डिस्कशन करी थी मर्दों की फितरत के बारे में, लेकिन एक उसूल है ना कि चीजें जो है ना वो अपने जिद से पहचानी जाती हैं, चीजें जो है उनकी सही हकीकत, तफसीली हकीकत उनके जिद से समझ में आती है। जब तक जिद यानी ऑपोजिट सामने मौजूद ना हो ना, तो फिर उस चीज की अपनी हकीकत भी सही समझ में नहीं आती। जैसे कि दिन दिन को अप्रिशिएट सही मानों में करने के लिए रात जरूरी है, अगर रात ना हो ना तो फिर दिन की क्या अहमियत है, दिन के क्या फवायद हैं, दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें इंसानों को ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आती है, अगरचे के थोड़ी समझ में आ जाती है, लेकिन जब रात का तकाबुल सामने आता है ना तो फिर दिन की अहमियत खुल करके उजागर होती है। तो इस तहत भी फितरत के हमने क्या बात करी थी ये भी जरा अगर किसी को याद हो तो वो बताएं। अच्छा, ये भी याद रखना जरूरी है, हाँ, तो चूंकि ये लोग जो होते हैं महारिम जो होते हैं इनके साथ रहना सहना एक ही घर के अंदर उमूमी होता है, या ये कि इनके साथ वैसे मिलना जुलना बहुत ज्यादा होता है, तो इनके साथ अगर पर्दा किया जाएगा तो बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो सहूलत पैदा करना ये मुक्तजा है, ठीक है। ये भी याद रखना जरूरी है कि शौहर के सिवा दूसरे महारिम को जो मुस्तस्ना किया गया है वो अहकाम हिजाब पर्दा से इस्तिस्ना है, ठीक है, क्योंकि सतर औरत से इस्तिस्ना नहीं है, ठीक, अहकाम हिजाब से महारिम को मुस्तस्ना किया गया है, सतर औरत से मुस्तस्ना नहीं किया गया है। औरत का जो बदन सतर में दाखिल है जिसका खोलना नमाज में जायज नहीं, उसका देखना महारिम के लिए भी जायज नहीं है, ठीक है। अब देखें यहां पर जो इबारत इन्होंने लिखी है ना, इसके साथ एक तो फुटनोट भी है, ठीक है, वन करके उन्होंने यहाँ पे एक फुट नोट लिखा हुआ है जो कि नीचे इसकी तफसील है। ठीक है, तफसील भी हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तफसील में, तफसील जो लिखी है ना नीचे फुट नोट के अंदर, यानी नीचे लाइन लगा करके जो उन्होंने पैराग्राफ लिखा है, ये तफसील जो है ये इनके बेटे हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहू की लिखी हुई है तफसील। ठीक है, और ये मारुफुल कुरान की जो इबारत है, जो असल मारूफ मसाइल के लिखने वाले कौन है, ये इनके वालिद साहब हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन, मुफ्ती आजम पाकिस्तान का भी इनको उलमा ने लकब दिया था। ठीक है, और शेख तसव्वुफ भी थे, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे ये। बहुत बड़े आलिम थे, दारुल उलूम कराची या दारुल उलूम कोरंगी जिसको कहते हैं, तो इसकी फाउंडेशन उन्होंने डाली पाकिस्तान जब इंडिया से हिजरत करके पहुंचे, तो अब वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दारुल उलूम में उनको उसका शुमार होता है। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत ये है कि जो औरत का सतर होता है तो वो सतर महरमों के सामने भी खोलना जायज नहीं। ठीक है, अब औरत का सतर क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बाल भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और उसके यानी हाथों पैरों और चेहरे के अलावा पूरा का पूरा बदन आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये जाहिर है इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो इस वजह से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी है। फरमाते हैं कि यहाँ मसले में थोड़ी सी तफसील है जो बयान होने से रह गई है। ठीक है, अच्छा रह गई है, या तो वाकई रह गई है या मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने छोड़ी है तफसील इसकी यहाँ पर। ठीक है, जो भी है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। वो तफसील ये है कि औरत के सतर का वो हिस्सा जो नाफ और घुटनों के दरमियान है, नीज पेट और कमर महरम के लिए भी देखना जायज नहीं है। ठीक है, तो औरत के सतर का वो हिस्सा जो नाफ और घुटनों के दरमियान है, जिसके अंदर के उसका पूरा पेट आ जाता है और कमर वगैरह आ जाती है, तो ये महरम के लिए भी देखना जायज नहीं। ठीक है, तो ये है इसकी तफसील। अलबत्ता इसके अलावा बदन के दूसरे हिस्से, मसलन सर, ठीक है, सर का मतलब होता है कान भी आ जाते हैं सर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है वो बाल भी आ जाते हैं, ओके, और इसके अंदर उसका चेहरा भी आ जाता है। ठीक है, बिकॉज सर जो है ना, ये सर कहाँ से शुरू होता है, गर्दन से शुरू होता है। ठीक है, तो गर्दन का जो जो हिस्सा है वो, उसका पूरा का पूरा चेहरा, उसके कान और उसके लिटरली जिसको के हेड कहा जाता है, जिसके ऊपर के बाल उगते हैं, तो वो वाला भी हिस्सा इसके अंदर आ जाता है। तो सर हो गया, कलाइयां हो गई, ठीक है, यानी जो के वुजू के अंदर जो हम धोते हैं, पिंडली वगैरह महरम के सामने खोली जा सकती हैं। ठीक है, जो कलाई जो है वो रिस्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तो पूरा बाजू नहीं है इसके अंदर शामिल। ठीक है, तो किसी ने सवाल किया था जी, ये शॉर्ट स्लीव्स पहनना घर के अंदर महरम मर्दों के सामने, क्या ये शॉर्ट स्लीव पहन सकते हैं, तो इसके अंदर कलाइयां आती हैं, पूरे का पूरा बाजू नहीं आता। अलबत्ता जमाना चूंकि फितने का है, इसलिए बिला जरूरत खोलने की आदत डालना मुनासिब नहीं है। शायद इसी वजह से हजरत मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने, नमाज के सतर ही को महरम का सतर करार दिया है। वल्लाहु आलम। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, 1419, आज 1439 चल रहा है। ठीक है, आज 1439 चल रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये इबारत 1419 में लिखी थी। ठीक है, तो आज से कितने साल पहले, 20 साल पहले, राइट। अच्छा, अब ये एक बहुत ही गहरी डिस्कशन है, तो इससे पहले आप लोगों के जो कमेंट्स या सवाल हैं ये देख लेते हैं। इंसान की फितरत में हया है, जैसे कि हजरत आदम और हजरत हव्वा ने खुद को जन्नत के पत्तों से छुपाया था जिस वक्त कोई अहकाम भी नाजिल नहीं हुए थे। इंस्टिंक्ट जबिल्लत, जबिल्लत यानी इंस्टिंक्ट में अल्लाह ताला ने, जबिल्लत में अल्लाह ताला ने हया को इंसान की रखा है, और मर्दों के लिए गैरत ज्यादा रखी है, औरतों के लिए हया को ज्यादा रखा है, लेकिन मर्दों में भी हया होती है जो कि उनकी गैरत के मुकाबले में कम होती है, और औरतों के अंदर भी गैरत होती है लेकिन मर्दों के यानी उनकी हया के मुकाबले में उनकी गैरत कम होती है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर एक बात याद आई, कल किसी ने सवाल लिखा था जो कि मैंने क्लास खत्म होने के बाद देखा, तो उनका जवाब मैं नहीं दे सका था, तो चूंकि बात आई अल्लाह ने याद दिला दिया, तो एक बात को याद रखें कि ये जो हर चीज की एक मिकदार होती है ना, ये मिकदार भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि मिकदार भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की तखलीक जो है ना उसके अंदर कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं है, कोई भी चीज कि ये ज्यादा हो जाए ये कम हो जाए, तो यानी एवरीथिंग हैज अ रीजन। तो उसी तरीके से औरत के अंदर हया ज्यादा और गैरत कम, ठीक है, उसी तरीके से मर्द के अंदर गैरत ज्यादा और हया कम, ठीक है। तो अब जो फितरत है ना अल्लाह ताला की बनाई हुई, वो फितरत ये है, लेकिन अगर बात फितरत को मस करने की हो, फितरत खराब हो जाए किसी भी वजह से, ठीक है, यानी गुनाह की वजह से फितरत जो है वो मस हो सकती है, हो सकता है अल्लाह आलम बीमारी की वजह से फितरत मस हो सकती है, ठीक है, मस हो जाना, मस का मतलब होता है म्यूटिलेट हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। अब ये फितरत मस होने से क्या हो सकता है कि मर्द के अंदर क्या होना चाहिए, गैरत होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर गैरत ज्यादा होनी चाहिए और हया उसके अंदर होनी चाहिए लेकिन गैरत के मुकाबले में कम, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मर्द के अंदर हया जो है वो ज्यादा और गैरत जो है वो कम, तो क्या होगा, यानी है तो दोनों चीजें मौजूद, यानी वजूद दोनों का है लेकिन हया जो है वो उसकी गैरत पे गालिब आ गई, तो ऐसे मर्द को क्या कहेंगे, उसको यही कहेंगे ना कि जी समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है ना, यानी समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड, ठीक है, कुछ करने की जरूरत है, या तो किसी इलाज की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है, ठीक है, कि हया जो है वो ज्यादा हो गई है इसके अंदर और गैरत इसकी हया के तहत हो गई है, ठीक है, इसकी तो गैरत ज्यादा होनी चाहिए थी और हया जो है वो गैरत के कम के तहत होनी चाहिए थी, ठीक है, तो इसको कुछ काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, इसको हो सकता है किसी मेडिसिन की जरूरत पड़े। तो उसी तरीके से औरत के अंदर भी अल्लाह ताला ने कितनी मिकदार रखी है, किसकी, इन दोनों का तनासुब क्या रखा है, ठीक है, हया ज्यादा और बहुत ज्यादा औरत के अंदर, लेकिन गैरत जो है वो हया के मुकाबले में कम। तो इसी तरीके से औरत के लिए जो अल्लाह ताला की बनाई हुई फितरत है वो ये है कि उसकी गैरत उसके अंदर होनी चाहिए लेकिन हया के तहत होनी चाहिए, अगर गैरत ज्यादा हो गई और हया जो है वो गैरत के तहत हो गई तो उस औरत को फिर काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, उस औरत को फिर इलाज की जरूरत पड़ेगी, दवाएं हो सकते हैं लेनी पड़ जाए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ चीजों का वजूद नहीं बनाया बल्कि अल्लाह ताला ने उस वजूद के अंदर तनासुब भी बनाया है जिसको फितरत कहते हैं, और फितरत जो है वो किसी वजह से अगर मस हो जाए तो फिर मामला जो है ना वो फितरत के मुताबिक नहीं हो सकता, इसलिए कि फितरत चेंज हो गई। तो इसी तरीके से ये मर्दों के अंदर, ये जो महरम मर्द होते हैं ना, इनके अंदर की जिबिल्लत और फितरत अल्लाह ताला ने क्या बनाई है कि ये अपनी महरम औरतों के इज्जत के मुहाफिज होते हैं, ठीक है, ये फितरत के मुताबिक है, और जहां पर फितरत मस हो जाए, जहां पर फितरत मस हो जाए तो वहां पर क्या होता है कि ये अपनी औरतों की इज्जत के मुहाफिज नहीं रहते हैं, ठीक है ना, औरतों की इज्जत के मुहाफिज नहीं रहते हैं, जैसा कि हमारे सामने बहुत खुल करके ये बात आई हुई है, ठीक है, कि खुद ही बाप जो होता है वो अपनी बेटी को बेपर्दा करने पर मजबूर करता है, खुद ही शौहर जो है वो अपनी बीवी के पर्दे के खिलाफ होता है, राइट, कितनी मिसालें हमारे सामने, जानते हैं हम सब, ठीक है, हमारी अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसी मिसालें हमने देखी, दूसरों के अंदर हम देखते हैं, हत्ता कि अगर ज्यादा दूर जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो ये, यानी वो तो लिबास ही उतार करके अपनी औरतों को दुनिया के सामने करते हैं, राइट, तो क्या है, क्या वो मर्द नहीं है, राइट, क्या मेडिकली स्पीकिंग वो मर्द नहीं है, क्या उनकी औरतें जो है मेडिकली स्पीकिंग जो है वो औरत नहीं है, लेकिन क्या हो गया उनको, क्या हो गया उनको कि उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, इसको कहते हैं फितरत मस हो गई, ठीक है। तो जहां अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है ना वहीं पर फितरत के मस होने का इख्तियार भी इंसान को दिया है, तुम ऐसी हरकतें शुरू कर दो कि जो कि मेरे निजाम के बिल्कुल खिलाफ जाने वाली हो ना, तो तुम्हारी ये मेरी बनाई हुई फितरत तुम्हारी मस हो जाएगी, ठीक है, शैतान के साथ जब तुम दोस्तियां करने शुरू हो जाओगे, शैतान के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी बनाई हुई फितरत मस हो जाएगी, ठीक है। फितरत अल्लाह यानी हक को पहचानने की इस्तेदाद, हक को पहचानने की इस्तेदाद जो है वो फितरत में से एक फितरत है, उसी तरीके से हया फितरत में से, यानी फितरत जो अल्लाह ताला ने फितरतें बनाई उनमें से हया एक फितरत है, गैरत एक फितरत है, और ये आपने जो बताया ये भी बिल्कुल सही फरमाया कि हक को पहचानना भी अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में डाला है, लेकिन वही होता है काफिर वो हक को नहीं पहचानता, तो वो क्यों नहीं पहचानता भाई, जब अल्लाह ने बनाया उसको हक की पहचान के साथ, वो इसलिए क्योंकि अपनी उस फितरत को ना वो छुपाता है, اسی وجہ سے اس کو کافر کہتے ہیں. کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا, دبانے والا, حق کو دبانے والا, اس کو کافر کہتے ہیں. عورت کی فطرت میں حیا اور مرد کی فطرت میں غیرت ہے. جی, سو ان ہوم ان فرنٹ آف محرم لائک ہسبینڈ اینڈ سنز کین اے لیڈی ویئر شارٹ سلیوز شرٹس ود لوز ٹراؤزرز. لوز ٹراؤزرز, دیکھیں ہسبینڈ جو ہے نا, یہ ہسبینڈ اور وائف یہ الگ مخلوق ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایکسیپشنز ہیں, ٹھیک ہے. ان کے بارے میں ہم پیچھے بھی شاید پڑھ چکے ہیں یا آگے شاید پڑھیں گے کہ ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بلکہ آگے عبارت کے اندر آ بھی رہا ہے, اس کو ہم وہیں پہ پڑھتے ہیں. یہاں پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا, یہاں پر ہسبینڈ کی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر ہسبینڈ کے علاوہ محرم مردوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو اس کو ہم ذرا پڑھ لیں کہ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ البتہ زمانہ چونکہ فتنے کا ہے. اب یہ زمانہ چونکہ فتنے کا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے آپ کے سامنے ابھی فتنے کا ایک رخ رکھا ہے, ٹھیک ہے. کیا رخ رکھا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت یہ بنائی محرم مردوں کی کہ وہ اپنی عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں, لیکن یہ بات ہر ایک کے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ جو غیر مسلم معاشرے ہوتے ہیں ان کے اندر تو علل یعنی انتہا, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنی عورتوں کے عصمتوں کے محافظ نہیں ہیں بلکہ دوسرے مردوں کے سامنے ان کو نچاتے ہیں. اور مسلمان معاشرے میں جن لوگوں نے ان کی پیروی شروع کری بھی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے یہاں بھی یہی معاملہ ہے. لیکن اس کا ایک اور بھی رخ ہے, یا سمجھ لیں کہ اس کا ایک اور بھی درجہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ درجہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک, اور یہ یعنی ایسا درجہ ہے کہ جس کو کہ سوچ کر کے ایک سلیم الفطرت انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے, ٹھیک ہے. سلیم الفطرت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جس کی فطرت مسخ ہوئی ہوتی ہے اس کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اچھے خاصے گناہگار لوگ بھی ایسے ہیں کہ جن کی کہ فطرت کمپلیٹلی مسخ نہیں ہوتی, اس لیے کہ مسخ کی بھی درجے ہیں نا, 50% مسخ ہو گئی, 80% مسخ ہو گئی, 100% مسخ ہو گئی, تو مسخ کے بھی درجے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس کی مسخ جو ہے وہ ابھی 30% ہوئی, مسخ ہوئی ہے, تو اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 50% مسخ ہوئی ہے, اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا یعنی اگلا درجہ کیا ہے فطرت کے مسخ ہونے کا, وہ درجہ یہ ہے کہ جو محرم مرد ہیں, نہ صرف یہ کہ دوسروں کے سامنے اپنی محرم عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں, بلکہ وہ خود اس عزت کو تار تار کرنے پر اتر آتے ہیں, خود اتر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ خود اترنا جو ہے اس کے لیے انگریزی زبان کے اندر باقاعدہ لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں انسیسٹ, INCEST, انسیسٹ, ٹھیک ہے. اور یہ انسیسٹ جو ہے نا, یہ کرائم اس وقت تو دنیا کے اندر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, بہت زیادہ پھیلا ہوا, ٹھیک ہے. اور دنیا میں صرف نان مسلم معاشرے نہیں بلکہ مسلمان معاشروں کے اندر یہ انسیسٹ کا کرائم بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چیز ایسی, یہ ایک ایسا جرم ہے کہ چونکہ ایک یعنی ابھی بھی دنیا کے اندر جو چند چیزیں جو ہے نا جن کو کہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے, چند چیزیں رہ گئی ہیں جن کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے, ان میں سے ایک ہی انسیسٹ کا کرائم بھی ہے, ٹھیک ہے. ورنہ تو باقی چیزیں جو ہیں جو ناپسندیدہ تھیں اب ان کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں ساری کی ساری دنیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا کرائم ہے چونکہ اس کی نوعیت ایسی ہے کہ گھر کے اپنے مرد, اپنے محرم رشتے, وہ اس کرائم کا مرتکب ہوتے ہیں, تو اس کرائم کا تذکرہ نہیں ہوتا کہیں, ٹھیک ہے, اس کرائم کا پھر کوئی تذکرہ نہیں کرتا, حتیٰ کہ ایون نان مسلم معاشروں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں کرتے, بہت کم لوگ کرتے ہیں اس کا تذکرہ. اور ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کا تذکرہ ویسے ہی نہیں کیا جا سکتا, ورنہ تو یعنی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بھونچال آ جائے گا گھر کے اندر, رائٹ, اور کیا کیا نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے نا یہ چیز ہے, لیکن اس کا معاملہ کس کو پتا لگتا ہے؟ اس کا معاملہ جو ہے وہ صرف علماء اور مشائخ کو پتا لگتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں علماء اور مشائخ کو ہم کتنا لائٹلی لیتے ہیں, لیکن علماء اور مشائخ کا معاملہ پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی مسئلے میں پھنستے ہیں نا, تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنا مسئلہ پھر علماء اور مشائخ کے سامنے آ کے بیان کرتے ہیں, وہ اور کسی کے سامنے نہیں جا کر کے بیان کر سکتے, ٹھیک ہے. تو مشائخ کے سامنے جا کر کے پھر اپنے حالات کھولتے ہیں, تو اس میں پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. तो इस वजह से जब हम अमेरिका में रहते थे तो वहां पे दारुलिफ्ता था, ठीक है, दारुलिफ्ता यानी जिसके अंदर लोग फोन करके या आ करके फतवा लेते हैं कि जी इस मामले में फिर क्या क्या करना चाहिए, कि राइट, फतवा मुफ्ती लोग बैठे होते हैं, तो दारुलिफ्ता के मुफ्ती हजरत बताते थे कि हमारे पास अक्सर ऐसे लोगों के फोन आते हैं, खुसूसन औरतों के, ठीक है, मुसलमान औरतों के, पाकिस्तानी औरतों के, इंडियन औरतों के फोन आते हैं जो अमेरिका में सेटल्ड हैं काफी अरसे से, राइट, या कुछ जो भी काफी अरसे से, या नहीं, तो वो फिर हमसे पूछती हैं कि हमारे घर के अंदर ये मसला हो गया है, किसी महरम मर्द ने ये हरकत कर दी है मेरी बेटी के साथ, या मेरे साथ ये हरकत कर दी है, अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो किसको पता लगा ये चीज? दारुल इफ्ता में जो मुफ्ती साहब बैठे हुए, सिर्फ उनको पता लगा। अब मुफ्ती साहब जो है वो कोई पूरे दुनिया को तो नहीं बताएंगे कि इस औरत ने मेरे पास सिर्फ मुझे फोन किया था और ये मुझे बताया था, ये मुझसे पूछा था, ठीक है। तो ये जो उलमा लिख रहे हैं ना किताब के अंदर, फितने का अंदेशा, और जमाना चूंकि फितने का है, तो ये जो लिख रहे हैं ना, ये किसी पसे मंजर की वजह से लिख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं लिख रहे, खामखानी लोगों को डराने के लिए लिख रहे हैं। ये चीज हो रही है और ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से ना इस टॉपिक को इस जमाने के अंदर, ये तो अब तो ये यानी ये जो खुसूसन ये जैनब कसूर का जो वाकया अभी हुआ है, तो इसके बाद तो गोया के अखबारों के मुंह खुल गए और इस तरह के कितने वाकया जो है वो आने शुरू हो गए अखबारों के अंदर, ठीक है। अब तो ये बहुत ओपनली जो चीज जो है ना वो हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो है वो यानी सामने आ रही है, हम कितना इससे मुंह छुपाएं लेकिन ये सामने आ रही है, ये है, कितना छुप सकते हैं इससे। तो भाई शरीयत की खिलाफ वर्जी, हया, ठीक है, शरीयत की खिलाफ वर्जी भी, और यहां पर यानी शरीयत की खिलाफ वर्जी से हुआ क्या, क्योंकि बजाय तो शरीयत ने तो ने इजाजत दी है कि जी आप ये चीजें खोल सकती हैं, ठीक है ना, महरम मर्दों के सामने आपको पर्दे की जरूरत नहीं है, शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन शरीयत की इजाजत सिर्फ इसमें इसमें तो नहीं है ना, शरीयत ने और चीजों की जो पाबंदी लगाई थी, ठीक है, नजरों की हिफाजत करो, ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, ठीक है, ये बेहुदा ड्रामे मत देखो अपने घरों के अंदर बैठ करके, राइट, ये फिल्में मत देखो, ये भी तो पाबंदियां शरीयत ने लगाई थी, राइट। तो जब इन पाबंदियों को हमने तोड़ा तो इनकी वजह से फितरतें मस्ख होनी शुरू हुई, राइट, इनकी वजह से फितरतें मस्ख होनी शुरू शुरू हुई, हत्ता के महरम मर्द, इस्मत अस्मतों के की हिफाजत करने वाले मर्द वही अस्मतों के डाकू बन गए, ठीक है। तो हर मर्द के साथ ऐसा नहीं होता, जो नेक परहेजगार होते हैं, जो कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गुनाह में नहीं लगे होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हर भाई जो है वो डाकू बना हुआ है, हर बाप जो है वो डाकू बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, खुसूसन ऐसे मकामात के ऊपर कि जहां पर के भाई है, बाप है, राइट, ससुर है, ठीक है, या चचा है, या मामू है, और उसकी जिंदगी गुनाहों वाली गुजर रही है, उसकी जिंदगी के अंदर कोई पाबंदियां नहीं है, हराम देखता भी है, हराम खाता भी है, हराम जगहों के ऊपर जाता भी है, ठीक है। तो अब ऐसे जो लोग हैं ना, इनसे एहतियात करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके अंदर ये पर्दे के अहकाम जो है ना, उन पर्दे के अहकाम को फिर यानी ये वाला जो नेक्स्ट लेवल है वहां पे लेकर के आना पड़ेगा कि सतर की हिफाजत जिस तरह गैर महरम के सामने करनी होती है, उसी तरीके से सतर की हिफाजत इन महरमों के सामने करनी पड़ेगी। और उसके ऊपर लोगों ने बड़ी तफसील से लिखा है, इतना कुछ लिखा है कि दिल तो चाहता है कि आप लोगों को भेजूं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उसको शेयर करूं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं कि हिम्मत नहीं हो रही कि उसको आपके सामने शेयर करें, लेकिन बात को उम्मीद है कि अकल जो इस्तेमाल करता है उसकी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके तहत जो है ना बाकायदा यानी एक बात तो ये है कि जी यानी अपने आप को एक्सपोज ना करें, इवन घरों के अंदर भी, क्योंकि लोग जो है ना जो बहुत गुनाह में नहीं भी पड़े हुए, क्योंकि हर जगह ही एक बेहयाई है ना, तो इस वजह से ना ये शैतान जो है वो इस वक्त खुला हुआ है, बहुत बुरी तरीके से खुला हुआ है, ठीक है, तो वो हर मौके को जो है वो इंसान के दिल के अंदर वसवसे और घिनौने ख्यालात और बुराइयां डालने के अंदर लगा हुआ है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि बुराई करते नहीं है, लेकिन उनके जहनों के अंदर तो बुरे ख्याल चल रहे होते हैं ना, क्योंकि इस किस्म के इमेजेस और बातें जो हैं वो बहुत कसरत के साथ फैलाई हुई है इस वक्त, ठीक है। तो भाई हया का तकाजा तो ये अगरचे के शरीयत का तकाजा नहीं है, ठीक है, यानी शरीयत के जो रूल्स होते हैं, जो कवानीन होते हैं, कवानीन का ये तकाजा नहीं है, लेकिन हया तो एक फितरत वाली चीज है ना, ये तो एक फीलिंग है हया। तो इस फीलिंग का तकाजा ये है कि घर के अंदर ऐसे ना रहें जैसे कि एक बीवी शौहर के सामने रहती है, ठीक है। शौहर बीवी का अगर घर है तो वहां पे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पर भी जाहिर है वो इसका मामला ये नहीं है कि काफिरों की तरह जो है वो बेलिबास रहना शुरू हो जाए कि जी शौहर है तो बेलिबास हर वक्त गुजारे, ठीक है, लेकिन वहां पर कोई सतर नहीं है शौहर के साथ और बीवी बीवी का शौहर के सामने, शौहर का बीवी के सामने, ठीक है। आगे तो खैर आयशा जल्दी की हदीस आगे आ रही है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो दूसरे रिश्तेदार हैं तो उनको खामखा यानी उनको आजमाइश में मुबतला ना करें, ठीक है, उनको आजमाइश में मुबतला ना करें, उनकी यानी वसवसों के बढ़ाने का सबब ना बने कि बहुत शॉर्ट स्लीव्स पहन करके चल रही हैं और पिंडियां खोर करके जो है वो घर के अंदर रह रही हैं, राइट, और जो है वो यानी दुपट्टे के बगैर जो है वो रह रही है, तो ये ना करें, लोगों को इस आजमाइश में ना डालें, अपने आप को सबब ना बनाएं किसी का आजमाइश होने का, आजमाइश में पड़ने का, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। बाकी अगर मौका मिला तो वो जो चीजें लोगों ने लिखी है ना तो उनको किसी तरीके से कुछ यानी उसमें से जो चीजें बहुत ही ज्यादा परेशान कुन है, खैर परेशान कुन चीजें तो मालूम होनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें जो दिल नहीं चाहता कि किसी से शेयर करें, तो उसको निकाल करके फिर आपके साथ शायद व्हाट्सएप के ऊपर भेज दें। आगे चलने के शायद में 8 किस्म के महरम मर्दों का और 4 दूसरी अकसाम का पर्दे से इस्तिस्ना किया गया है, और सूरह अहज़ाब की आयत जो नुज़ूल में इससे मुकद्दम है इसमें सिर्फ 4 अकसाम का जिक्र है, 5 का इजाफा सूरह नूर की आयत में किया गया है जो उसके बाद नाजिल हुई है। तंबीह, याद रहे कि इस जगह लफ्ज महरम आम मानी में इस्तेमाल हुआ है जो शोहर पर भी मुश्तमिल है। फुकहा की इस्तिलाह में महरम की जो खास तफसीर है कि जिससे कभी निकाह जायज ना हो वो यहाँ पर मुराद नहीं है, यानी यहाँ तफसीर में जो हजरत महरम का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो ये वो फिकी इस्तेमाल नहीं है बल्कि यहाँ पर सब्स के अंदर शामिल है। तफसील इन 12 मुस्तस्नियात की जो सूरह नूर की मजकूर आयत में है वो ये है कि सबसे पहले शौहर है कि जिससे बीवी के किसी उज्व का पर्दा नहीं है, अगरचे आजाए मखसूसा को बिला जरूरत देखना खिलाफ उला है। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि मा रआ मिन्नी वला रई तो मिनहू, कि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे खास उसको देखा ना मैंने आपके खास उसको देखा, ठीक है, लेकिन ये बिला यानी खिलाफ उला ही वाला मामला कहलाएगा, हराम नहीं है ये, ठीक है। दूसरे अपने बाप हैं जिनमें दादा पर दादा सब दाखिल हैं, ठीक है, बाप के ऊपर जितने लोग आते हैं वो भी इसमें दाखिल हैं। तीसरे शौहर का बाप है, इसमें दादा पर दादा यानी शौहर के दादा पर दादा, तो ससुर और ससुर के बाप और ससुर के दादा ये भी सब इसमें दाखिल हैं। चौथे अपने लड़के जो अपनी औलाद में हैं, पांचवें शौहर के लड़के जो किसी दूसरी बीवी से हों, छठे अपने भाई, इसमें हकीकी भी दाखिल हैं और बाप शरीक यानी अल्लाती और माँ शरीक यानी अखियाफी भी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मामू, खाला या चचा, ताया और फूफी के लड़के जिनको आम उर्फ में भाई कहा जाता है और अंग्रेजी में उनको कजन्स कहा जाता है, वो इसमें दाखिल नहीं है, वो गैर महरम है। सातवीं, भाई के लड़के, यहाँ भी सिर्फ हकीकी या अल्लाती या अख्याफी भाई के लड़के मुराद हैं, दूसरे उर्फी भाइयों के लड़के शामिल नहीं है, यानी कजन्स की औलादें जो हैं वो गैर महरम है, जैसे कजन्स गैर महरम है उसी तरह उनकी औलादें गैर महरम है। आठवीं, बहनों के लड़के, इसमें भी बहनों से हकीकी और अल्लाती अख्याफी बहने मुराद हैं, मामूजात चचाजात बहने दाखिल नहीं है, ये 8 किस्में तो महारिम की हैं, ठीक है। तो ये नाजिर के एतबार से ये एक्सेप्शंस हैं कि जिनके सामने उतना खोला जा सकता है जितना कि इस आयत ने इजाजत दी है। नवी किस्म, औ निसाएहिन्ना, यानी अपनी औरतों से मुराद यानी अपनी औरतें, जिससे मुराद मुसलमान औरतें हैं कि इनके सामने भी वो तमाम आज़ा खोलना जायज है जो अपने बाप बेटों के सामने खोले जा सकते हैं, और ये ऊपर लिखा जा चुका है कि ये इस्तिस्ना अहकाम हिजाब पर्दा से है, अहकाम सतर से नहीं है, इसलिए जो आज़ा एक औरत अपने महरम मर्दों के सामने नहीं खोल सकती उनका खोलना किसी मुसलमान औरत के सामने भी जायज नहीं है, इलाज मुआलजा वगैरह की जरूरतें मुस्तस्ना है। अगर घर में कोई मर्द ना हो सिर्फ औरतें हों तो उनसे भी पर्दा किया जाए, मतलब दुपट्टा सर पर किया जाए, नहीं दुपट्टा सर पर रख लेना जो है ये पर्दा नहीं होता, ठीक है, तो दुपट्टा जो आप सर पे रख रही हैं ना, ये अदब की वजह से रख रही हैं, और ये पर्दा है ही नहीं पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मुसलमान औरतें घर के अंदर हैं, अभी खैर गैर मुस्लिम औरतों का भी डिस्कशन आगे आएगा, लेकिन उम्मीद तो मुसलमान ही औरतें होती हैं, तो उनसे पर्दा नहीं होता, लेकिन जो महरम मर्द जय क्या कहते हैं, जो औरत का सतर है महरम मर्दों के सामने, तो वही सतर जो है वो औरतों के सामने भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा खुद भी तो स्टडी कर लेना पीछे जाकर के, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और किताब के अंदर लिखी हुई भी हैं। तो ये बस ये जो लाइन है इसको यहाँ पे उसूल के तौर पर पढ़ लें। उसूल ये है कि जो आजा एक औरत अपने महरम मर्दों के सामने नहीं खोल सकती, ठीक है, यानी नाप से लेकर के जो घुटनों वाला मुसलमान औरत के सामने सर खोल सकती है, ठीक है, कलाइयां खोल सकती है, पिंडियां आई थी उसके अंदर, तो वो खोल सकती है। किताब में सब लिखा हुआ भी हमने पढ़ भी लिया था। आगे चले, निसाइहिन्ना, मुसलमान औरतों की कैद से ही मालूम हुआ कि काफिर मुशरिक औरतों से भी पर्दा वाजिब है, वो गैर महरम मर्दों के हुक्म में है। अब ये काफिर औरतों वाला मामला हमारे लिए रेलिवेंट इस तरह से हो जाता है कि इंडिया में रहते हो तो वहां तो जाहिर है मेजोरिटी हिंदुओं की है, लेकिन इवन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहां पर घरों के अंदर काम काज करने वाली जो औरतें आती हैं ना, वो नॉन मुस्लिम होती हैं, हिंदू होती हैं, और कुछ जगहों पर शायद क्रिश्चियंस भी होती हों, तो इस वजह से ये भी रेलिवेंट है। ऐसा नहीं है कि जी गैर मुस्लिम औरतों से वास्ता ही कभी नहीं पड़ता। फरमाया कि इब्ने कसीर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह से इस आयत की तफसीर में नकल किया है कि इससे मालूम हुआ कि मुसलमान औरत के लिए जायज नहीं कि किसी काफिर औरत के सामने अपने अज़ा खोले, लेकिन अहादीस सहीहा में ऐसी रवायत मौजूद हैं कि जिनमें काफिर औरतों का अजवाज मुतहरात के पास जाना साबित है, इसलिए इस मसले में आइमा मुश्तहिदीन का इख्तलाफ है। बाज ने काफिर औरतों को मिसले गैर महरम मर्दों के करार दिया है, बाज ने इस मामले में मुसलमान और काफिर दोनों किस्म की औरतों का एक ही हुक्म रखा है कि इनसे पर्दा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि काफिर औरतें आती थी, तो अजवाज मुतहरात के अमल को ना कुरान की तफसीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखें ये नहीं कहा जाएगा नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, ऐसा ऐसा भी तो कहा जा सकता कि कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म तो दे दिया, लेकिन अजवाज मुतहरात नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला उस हुक्म पर नहीं अमल करती, हुक्म पे अमल नहीं करती थी। लेकिन उम्मत का अमल क्या है, राइट, उम्मत का अमल क्या है जो कि कुरान की रोशनी में ही है, वो क्या अमल है कि नहीं, ये नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि अजवाज मुताहरात का जो अमल है ना, वो बजाहिर कुरान के खिलाफ नजर आ रहा है, लेकिन ये कुरान की तफसीर है, ये कुरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये कुरान की तफसीर माना जाएगा कि उन्होंने कुरान को हमसे ज्यादा बेहतर समझा, और वो यानी नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की इजाजत से वो ये काम कर रही थी, या कोई काम अगर नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर उन्होंने नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बाद किया, पर्दा फरमा जाने के बाद किया, ठीक है, तो भी वो जो काम उन्होंने किया ना, वो कुरान की तफसीर ही के मुताबिक किया, कुरान की खिलाफ वर्जी में नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से ना शैतान के रास्ते को बंद किया जाएगा कि वो बदगुमानी डाल करके उन यानी हस्तियों के खिलाफ हमारे दिलों को उकसाता है, ठीक तो एक बात याद रखें कि ये जो हम बार बार उलमा उलमा की बात करते रहते हैं ना कि ये उलमा यही यानी तफसीली अहकाम उन्होंने ही समझे हैं, और तफसीली अहकाम वही हमें समझा सकते हैं, हम खुद से पढ़ें तो हमें वो तफसीली अहकाम क्यों नहीं समझ में आ सकते, इसलिए कि हमने जो है वो मेहनत और मशक्कत वाला वाला रास्ता नहीं अपनाया, ठीक है। हमने जो है वो लेते लिया तफक्कहु फिद दीन वाला जो हुक्म अल्लाह ताला का है उसके ऊपर हमने अमल नहीं किया, इस वजह से हम उलमा में शामिल नहीं हो सकते, बेशक हम 4,000 किताबें पढ़ लें, ठीक है, हम अपने घर के अंदर किताबें खरीद करके लेकर के हैं, या इंटरनेट के ऊपर जाकर के 4,000 किताबें पढ़ लें, हम उलमा नहीं बन सकते, ठीक है। तो अब इसके ऊपर ना शैतान दिल में ये बात डाल सकता है कि भाई जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मेहनत करके इल्म हासिल कर लिया है, तो इस वजह से हम उन्हीं की राय के ऊपर अमल करें, ठीक है, सिर्फ मेहनत की वजह से कि उन्होंने मेहनत करके जो है वो किताबें पढ़ ली हैं, मेहनत करके उसाद्जा के पास बैठे हैं, राइट, और उन्होंने जो है वो बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, तो इस वजह से क्या दीन की तफसीर हम उलमा से लें? तो ये तो बात समझ में नहीं आती। इसलिए कि मेहनत वाला जो मामला है ये तो काफिर भी कर सकता है, मेहनत वाला मामला तो फासिक फाजिर भी कर सकता है, लेकिन फासिक फाजिर और काफिर से तो आप कुरान की तफसीर नहीं लेंगे ना भाई। कुरान का इल्म हासिल करने के लिए ये जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं ना स्कॉलर्स, ये नॉन मुस्लिम्स होते हैं, लेकिन कुरान का इतना तफसीली इल्म हासिल करते हैं कि जितना कि हो सकता है बहुत से उलमा ने भी हासिल ना किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उन काफिर लोगों को उलमा कंसिडर करना शुरू कर देंगे और उनसे तफसीर लेना शुरू कर देंगे? ठीक है, तो ये तो बात सब समझ में नहीं आती। ठीक है, इसका जवाब और बहुत इंपॉर्टेंट जवाब वो ये है कि ये जो उलमाए कराम होते हैं ना, ये सिर्फ यानी इनसे जो हम दीन की तफसीर लेते हैं, ठीक है, और उलमा का जब भी नाम लिया जाए तो सहाबा को कभी मत भूलें, इसलिए कि सहाबा पहले उलमा है। तो ये जो उलमा से हम दीन की तफसीर लेते हैं ये सिर्फ इनकी मेहनत मशक्कत और कुर्बानियों की वजह से नहीं लेते, बल्कि हम इनके तकवा की वजह से लेते हैं, ठीक है, इनके यानी तकर्रुब इलल्लाह की वजह से लेते हैं। तो सिर्फ इनके बारे में ये गुमान रखना कि इन्होंने जी बड़ी मेहनतें करी हैं, सिर्फ ये गुमान रखना काफी नहीं है, बल्कि इनके बारे में ये गुमान रखना कि ये बहुत अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे थे, बहुत अल्लाह ताला के महबूब बंदे थे, बहुत मुत्तकी परहेजगार बंदे थे, सच्चे बंदे थे और बंदियां थी, ठीक है, ये गुमान रखना भी जरूरी है। और इस गुमान को ऐसी खामखई इमेजिनरी तौर पर नहीं, बल्कि इसके लिए दलीलें भी हैं, कुरान और हदीस की बेशुमार दलीलें इस बात के ऊपर भी हैं कि ये अल्लाह ताला यानी ये सच्चे थे और सुच्चे थे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें किसी इंसान को आलिम बनाती हैं, और हमारा जो इनके बारे में एतमाद वाला मामला है ये सिर्फ उनकी मेहनतों की बेसिस पर नहीं है, बल्कि उनके तकवा की बेस, बल्कि और तकवा इज एक्चुअली इवन मोर इंपॉर्टेंट, मेहनत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इनका है इनके ऊपर ट्रस्ट करने की रीजन, वो इनका तकवा है, ठीक है। तो मशा ये जो अजवाज मुताहरात का यहाँ पे जिक्र आया कि जी वो उनके पास नॉन मुस्लिम औरतें आती थी, तो अब जो है वो ये नहीं कहा जाएगा कि नाउज बिल्ला कुरान का हुक्म तो कुछ और था और अजवाज मुताहरात ने उन्होंने अहकाम को तोड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है, बल्कि क्या कि नहीं, उन्होंने हरगिज नहीं तोड़ा था, बल्कि असल में कुरान के हुक्म का मतलब ही ये है कि नॉन मुस्लिम औरतें एग्जेम्प्ट हैं इससे, ठीक है। अब उसको बाकी जो बाद में आने वाले उलमाए उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, जो कि आगे एक्सप्लेनेशन आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों के ये कुछ कमेंट पढ़ के फिर हम क्लास को खत्म करते हैं, बाकी किताब से कल ही इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फरमाया आपने कि यहाँ जैसे अक्सर हॉस्पिटल्स में स्टाफ फिलिपिनो होते हैं जो अक्सर नॉन मुस्लिम होती हैं, जी ये जवाब आगे आ रहा है, क्या जेठ और नंद के बच्चों से पर्दा करना चाहिए? नहीं, यहाँ पे चाहिए की बात तो 100% करना चाहिए, लेकिन क्या वाजिब है क्या वाजिब नहीं है ये आपका सवाल होना चाहिए। तो जेठ जो होता है ना वो खुद भी नामहरम होता है और उसके बच्चे भी नामहरम होते हैं, और उसी तरह से जो नंद होती है, नंद कौन होती है जी, जेठ और नंद, सॉरी ये यानी इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ, बिकॉज ये रिश्ते मुझे अजबर नहीं रहते कि जी जेठ क्या होता है और नन क्या होती है वगैरह। सिस्टर ऑफ हस्बैंड, अच्छा यानी हस्बैंड की जो बहन है, ओके, तो हस्बैंड की जो बहन हुई तो उसके बच्चे, हाँ माशाल्लाह जी होता है ना उसके साथ पर्दा, हस्बैंड की बहन यानी वो उसके कजन जो है ना, आप आपके बच्चों के तो खैर वो कजन जो है, हाँ मैथमेटिकल ब्रदर ऑफ हस्बैंड, जी 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 आप उनके बच्चों की बात करिए, उनकी बात नहीं करनी, जेठ जो है वो तो नामहरम ही होता है, ठीक है, भांजे भांजी, अच्छा आप जो है वो तो वो बनेंगे ना, ऑफ हस्बैंड, तो नहीं आई एम टोटली कंफ्यूज, इसका जो है आपको बाद में जवाब देते हैं, कल क्लास पर रखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह इनपुट्स भी बेशुमार आ रही हैं और ये आज इसके मुताबिक नहीं हो सकता, टाइम भी ओवर हो गया, तो इसका फायदा उठाते हुए मैं आपसे इजाजत देता हूँ, इंशाल्लाह कल इस पर बात करते हैं। ठीक है, सलाम वालेकुम।